पृष्ठ संख्या 30, छायावादोत्तर युग 1936 से 1953 ईस्वी। कला जब जिंदगी से दूर हटने लगती है तब वह निष्प्राण हो जाती है। वह आकाश में वायु पीकर अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकती। उसे धरती पर उतरकर रस सिक्त होना ही पड़ता है। धरती के जीवन की कुशल क्षेम जाननी ही पड़ती है। छायावाद की सारी मोहकता नयन के इंद्रजाल अभिराम में बंध गई, जिसे उसने अपनी कल्पना के अपार वैभव और सुकुमार भावों की सलज मुस्कान से मंडित किया था। उसका कलेवर मधु सौरभ और पराग से रंजित था। उसकी वाणी में त्रिवेणी की लहरों का गान था। किंतु जीवन की पृष्ठ संख्या 31 वास्तविक यथार्थता से दूर अतिशय वायवीय होने के कारण वह अधिक दिनों तक टिक न सका। पराधीनता के युग में वह जनता में फौलादी शक्ति ना भर सका। जीवन के व्यवहारिक धरातल पर उसकी उपादेयता अब अप्रासंगिक होने लगी। वैयक्तिकता का आंतरिक स्वर उस पर इतना हावी हो गया कि वह समाज के दुख दर्द की मुख्य धारा से कटता गया। उसकी विशेषताएं ही अब उसके दोष सिद्ध होने लगे। परिणाम स्वरूप वह पराभूत हो गया। छायावाद का पतन शीर्षक ग्रंथ में डॉक्टर देवराज ने इसकी विस्तार से विवेचना की है। छायावाद की समाप्ति की घोषणा स्वयं छायावादी कवियों विशेषकर पंत और निराला ने कर दी थी। पंत ने 1934 में युगांत लिखकर इसकी घोषणा कर दी थी तथा 1939 में युगवाणी के प्रकाशन से नए युग का संकेत भी कर दिया था। निराला की उत्तरवर्ती रचनाएं, जिसमें कुकुरमुत्ता आदि लंबी कविताएं सम्मिलित हैं, प्रगतिवाद से प्रभावित हैं। पद्य में ही नहीं, उनके अनेक गद्य साहित्य में भी यह प्रगतिशीलता देखी जा सकती है। छायावाद के अंतिम सीमांत में प्रकाशित राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, कामायनी आदि में छायावादी प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष देखा जा सकता है। 1935 ईस्वी में दिनकर की प्रकाशित रचना हुंकार एक नई काव्य प्रवृत्ति की सूचना देता है। उत्तर छायावादी कवियों में राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे, रामेश्वर शुक्ल अंचल तथा रामधारी सिंह दिनकर आदि ने छायावादी प्रवृत्तियों से आगे बढ़कर राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़कर समय सापेक्ष ऐसी रचनाएं की जिनमें देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता की वेदी पर प्राणों को आहुति कर देने का ओजस्वी संदेश मुखरित था। इस कविता को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की कविता भी कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, बालकृष्ण शर्मा नवीन की अनिकेतन, सुभद्रा कुमारी चौहान की वीरों का कैसा हो वसंत, दिनकर की जनतंत्र का जन्म आदि ऐसी ही रचनाएं हैं जिसने तत्कालीन राष्ट्र की चेतना को गतिमान और शक्तिवान बनाने का कार्य किया। जनतंत्र का काम शीर्षक कविता में दिनकर ने लिखा है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पृष्ठ संख्या 32, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। बच्चन, अंचल, नवीन, नरेंद्र शर्मा आदि के काव्य में एक भिन्न प्रकार की प्रेम की मस्ती और फक्कड़ानापन विद्यमान है। इनकी कविता को हालावात का नारा दिया गया जो आगे चल नहीं सका। जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं कि सामाजिक जीवन से परांगमुखता छायावाद के पतन का सबसे बड़ा कारण था, जिसकी ओर संकेत करते हुए दिनकर ने भी कहा था, इनवर्टेड कॉमा, छायावाद के कवियों में सबसे बड़ा दोष यह रहा कि वैयक्तिकता की धुन में आकर वे अपनी प्रत्येक अनुभूति तथा चेतना की हर एक सुखबुगाहट को अपना सर्वस्व मान बैठे। यह अनुभूति और सुखबुगाहट उनकी दृष्टि में इतनी महार्घ हो उठी कि उसके सामने उन्होंने समाज और विश्व की अनुभूतियों को कोई स्थान नहीं दिया। इन्वर्टेड कॉमा बंद। लेकिन साथ ही आगे उन्होंने यह भी कहा कि इन्वर्टेड कॉमा, छायावाद ने हिंदी कविता की अमूल्य सेवा की। समग्र हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई और काल ऐसा नहीं गुजरा है जब 15-20 वर्षों की अत्यल्प अवधि में साहित्य के भाव और भंगी दोनों क्षेत्रों में ऐसे अमूल परिवर्तन हुए हों। संभव है संपूर्ण विश्व के किसी भी साहित्य के लिए या दृष्टांत अप्रतिम और नवीन रहा हो। इन्वर्टेड कॉमा बंद। दिनकर का यह अनुमान गलत नहीं है। अपने अत्यल्प काल में छायावाद ने जितनी ख्याति अर्जित की वह हिंदी कविता के इतिहास में विरल है। छायावाद के पराभूत होते ही उसकी कब्र पर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद नाम के दो वर्ण संकर पैदा हो गए जिन्होंने हिंदी कविता को एक नई दिशा दी। इनमें तरुण कवियों ने नवीन जीवन आदर्श और नवीन सौंदर्य बोध के साथ अपनी रचनाओं को आकार दिया। उमंग और उत्साह भरे गीत गाए, शोषितों, लाचारों, उपेक्षितों के आंसू पोंछे, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद को चुनौती दी, आज़ादी का राग गाया और इसी के साथ कविता को भी परंपरागत मान्यताओं और संस्कारों से मुक्त किया। उसके मूल्यांकन के लिए कविता के नए प्रतिमान गढ़े गए। पंडित नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन, रांगेय राघव, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर, नेमिचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, श्रीकांत वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर नारायण, रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, पृष्ठ संख्या 33, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय, शंभुनाथ सिंह, जगदीश गुप्त, सुदामा पांडे, धूमिल आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जिन्होंने छायावादोत्तर हिंदी कविता के निर्माण में अपना यथेष्ट योगदान दिया। इसका और भी विस्तार से विवेचन हम आगे छायावादोत्तर काव्य की भूमिका में करेंगे। यह संकलन हिंदी के परास्नातक विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, अतः यह हिंदी के पंडित जनों के लिए नहीं है। इसे तैयार करने में जिन कवियों और विद्वानों की कृतियों से मैंने सहायता ली है उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। 15 अप्रैल 2015, राकेश कुमार द्विवेदी।